विषय पर आते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास का आज 18वां भाग है। पिछली बार हमने चर्चा की थी जो 8 सोर्स से नॉलेज को जानने के लिए जो 8 तरह के उपाय हैं, उनमें से 4 उपायों के मुख्य उपाय के बारे में हमने चर्चा की। वे होता है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट परसेप्शन, जो हम अपने इंद्रियों के द्वारा जानते हैं। दूसरा है अनुमान, इन्फरेंस, जब कॉज और इफेक्ट के बीच में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हो जाए और उनमें से किसी एक को देख करके जो ज्ञान हम करते हैं उसे हम इन्फरेंस या अनुमान कहते हैं। जैसे अगर राख पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो जला हुआ था, ये इफेक्ट को देखकर कॉज का इन्फरेंस करना। इसी तरह लोगों को देख करके ये हम अनुमान, सच अनुमान करते हैं कि उनके कोई अपने पास पिता माता भी जरूर होंगे। इसी तरह इफेक्ट को भी, कॉज को देखकर, कारण को देखकर के भी हम कार्य का अनुमान करते हैं। अगर बच्चा वा हमारे में से कोई पढ़ता नहीं है, जिस भी विषय में हम नहीं पढ़ते हैं उस विषय में हमारा ज्ञान नहीं होता है, ये कॉज को देख करके इफेक्ट का ज्ञान होता है। बच्चा अगर स्कूल में नहीं पढ़ता, घर में भी नहीं पढ़ता, तो हम ये अंदाज लगा लेते हैं कि इसका आगे फ्यूचर क्या होगा। अगर काले बादल ढक जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि बारिश होने वाली है, तो ये दूसरे तरह का ज्ञान का सोर्स है। तीसरा है उपमान है, जो बहुत कम यूज होता है, पर हम तब भी हमारे कुछ ज्ञानों का सोर्स उपमान है, एनालॉजी। जब हम किसी को, अनजान चीज को जानने के लिए किसी अनजान व्यक्ति की सहारा लेकर, उसे कम जानकारी व्यक्ति का सहारा लेकर उसके कंपेयर करके ज्ञान करते हैं। चौथा है शब्द, जितने एकेडमिकल नॉलेज हैं आपके हमारे, वो सब शब्द ज्ञान से होता है। वर्बल टेस्टिमोनी, किताबें पढ़ के हम जो जानते हैं, दूसरों से सुन के जो जानते हैं, जो हमने खुद देखा नहीं सुना नहीं है, हमने ऐसा किताबों से पढ़ा है, हमने कुछ डायरेक्ट कभी रियलाइज नहीं किया है। हमने पढ़ा हिस्ट्री के बारे में जो कुछ आपको नॉलेज है, ईश्वर के बारे में, संसार के बारे में, सृष्टि के बारे में, इस ज्यादातर ज्ञान हमारे शब्द ज्ञान होते हैं। 3-4 और अलग अलग हमारे दर्शनों में अलग अलग जरूरत के हिसाब से अलग अलग नंबर सब सोर्सेस एक्सेप्ट किया गया है। उसमें एक होता है अर्थापत्ति, बहुत सारे फिलोसफी में इसको नहीं मानते, पर आपको अर्थापत्ति का मतलब होता है पेस्टुलेशन, कि आप कुछ घटनाएं देख के बाकी घटनाओं के बारे में आप अंदाज लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा, कोई व्यक्ति है जो बहुत मोटा है, उसका नाम देवदत्त है, और वो कहता है कि मैं कभी भी दिन में नहीं खाता हूं, तो आप ये पक्का ज्ञान कर लेते हैं कि वो रात को अच्छा खाता है, बहुत खाता है, क्योंकि बिना खाए कोई मोटा होता नहीं है, और दिन में नहीं खाता है तो रात को खाता होगा। तो जो बिना कहे आप समझ जाते हैं, किसी ने आपको बताया नहीं पर उसकी बातों से, उसके व्यवहार से, आप अपने कॉमन सेंस यूज करके जो नॉलेज निकाल लेते हैं उसको हम अर्थापत्ति कहते हैं। 5वां 6ठा है ऐतिह, हिस्ट्री। शब्द प्रमाण और ऐतिह में जो फर्क है वो ये है कि इतिहास जो घटता है और किताबों में होता है, शब्द प्रमाण वो है कि जो इंसिडेंट्स होते नहीं है, जो इंसिडेंट्स नहीं है पर उनके बारे में हमें किताबों से पता लगता है। जैसे हमें और आपको कैसे पता चला कि ये दुनिया कैसी बनी, ये दुनिया कैसी बनी इसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती है, वो तो या तो साइंस खोज करके हमें बताता है या हमारे फिलोसफी बताती है। जो फिलोसोफर हैं, जो थिंकर्स हैं, वो अपने हिसाब से कल्पना करके, कल्पना करके बताते हैं। अगर वो रिलायबल हैं, ट्रस्टवर्थी हैं, तो हमें मानना चाहिए, नहीं तो नहीं मानना चाहिए। इतिहास में भी वैसे, इतिहास में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, पर प्रॉब्लम है कि दुनिया में जो इतिहास है, जो आंखों देखी बातों को, जो हिस्ट्री में बातें घटी उसको लिखना होता है। दुनिया में किसी भी देश का इतिहास, बड़े इंटरेस्टिंग बात है, जो इतिहास दुनिया के किसी भी देश में आप पढ़ते हैं वो 50% से ज्यादा झूठ होता है। वो उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अमेरिका में भी आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप जब जो ब्रिटिश जो व्हाइट मैन वो जिस तरह के अपने इंटरप्रिटेशन करेंगे, जो ब्लैक हैं, जो जो ओरिजिनल इंडियन अमेरिकन नेटिव हैं, उनके इंटरप्रिटेशन अलग होगा हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि हर एक हिस्ट्री के साथ अपने स्वार्थ जुड़ा होता है। और हर देश, हर कौम, हर सरकार कोशिश हिस्ट्री के साथ छेड़खानी करता है। और ज्यादातर देश, ज्यादातर कौम जो है, जो रेस है, वो अपने सुपरियरिटी दिखाने, दूसरों को इन्फीरियर दिखाने की कोशिश करता है। उसके जो हिस्टोरियंस होते हैं, इतिहास लिखने वाले होते हैं, वो उसी तरह के इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। सिर्फ दुनिया में एक ही देश को छोड़ करके, वो है भारत, जहाँ के हिस्ट्री लिखने वाले ठीक उल्टा तरीके से काम करते हैं, क्योंकि भारत के ज्यादातर जो विद्या है वो जो जो यूरोपियन स्कॉलर है उनके द्वारा लिखा गया, और इंडियन स्कॉलर के द्वारा उसका इमिटेशन का, हम बड़े नकल करने में बहुत एक्सपर्ट हैं और करते हैं। और भारत का ज्यादातर इतिहास, 50% इतिहास जो हम पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं और हमारे पिता पढ़ के, पिता माता पढ़ के आए हैं, उनमें 50% इतिहास में हमें झूठ झूठे तरीके से हमारे अंदर वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरा जाता है। जबकि अगर आप अमेरिका में पढ़ेंगे, जो जो व्हाइट अमेरिकन है उनके खिलाफ आपको इन्फीरियरिटी बताया जाएगा, वो कितने बुरे, हम कितने अच्छे हैं। वो भारत में उल्टा होता है, जो भारत में रहने वाले उनको ये सिखाया जाता है, तो इतना घटिया है इतिहास में। जैसे हर पढ़ा लिखा आर्य जो 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 इंडियन है, वो बड़े गर्व के साथ बोलेगा, क्योंकि वो स्कूल के हिस्ट्री में पढ़ा है कि हम इन्वेडर है, हम आक्रमण करके अंदर आए, हम वो हम आर्य हैं, वो जो सेंट्रल एशिया से घुसकर आए। और कमाल की बात है, हिंदुस्तान भारत के पूरे हिस्ट्री में, जितने भी 1,000, 5,000, 10,000 साल के हिस्ट्री में, ऐसा कोई वर्बल टेस्टिमोनी नहीं मिल पाता है, ऐसा कोई लिटरेचर प्रूफ नहीं मिल पाता है, ऐसा कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं मिलता है जो वो एस्टैब्लिश करे कि आर्य बाहर से आए भारत में। पर क्योंकि ब्रिटिश जो जो स्कॉलर ने ये कहा, यूरोपियन स्कॉलर ने इस पर लिखा, और हमारे स्कॉलर क्योंकि इमिटेशन, नकल करने में एक्सपर्ट हैं, उन्होंने उसको भी कोर्स में रखा और हम गर्व के साथ पढ़ते हैं। तो ये जो इतिहास भी हर जगह अपने ढंग से बदलता है, इसीलिए जब हम कभी इतिहास के बारे में भी बात करें, तो हमें ये बड़ा सावधानी बरतनी चाहिए कि वो कितना रिलायबल है। कभी कभी झूठ जब बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो सच माना जाता है, और ये बड़ी समस्या होती है लोगों को कन्विंस कराना कि ये झूठ है, क्योंकि सब मानते हैं। इसीलिए जब भी हिस्ट्री के बारे में भी बात करें, आपको हमेशा उसके जो भी दो अलग अलग वर्जन है, चार वर्जन है, सब जान लेना जरूरी है। क्योंकि ये जब भी आप किसी के बातों को भरोसा करते हो, किताब में लिखा हुआ हो या बात जो हमारे एक्सपीरियंस में नहीं आ सकता, उसमें हमेशा ये प्रॉब्लम बना रहता है कि वो कितना परसेंट झूठ है, कितना परसेंट सच है। और ये समझदार लोगों पर डिपेंड करता है कि वो कैसे उस सच्चाई को पता लगाते हैं, या झूठ को पता लगाते हैं, या कितना उनके एक्सेप्टेंस कैपेबिलिटी है, कितनी जल्दी हो वो उसको स्वीकार करते हैं। मेरा मानना है कि शब्द जो जो वर्बल टेस्टिमोनी व जो हिस्ट्री है, उसको आंख मूंद के कभी भी भरोसा नहीं करनी चाहिए। अपना दिमाग अलग अलग तरह के, जब आप उस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या रिसर्च करते हैं, आपको हमेशा कहा जाता है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, जरूर उसके दो चार अलग अलग वर्जन भी पढ़ लेना, उसके अगेंस्ट में क्या है, उसके प्रो में क्या है, तो आपको सही ज्ञान मिलता है। जब आप एक तरफा ज्ञान लेते हैं तो हमेशा एक तरफा होता है। अगला जो है संभव, प्रोबेबिलिटी। संभव एक सोर्स ऑफ नॉलेज इसीलिए है, कोई आपको कहे कि मैं रोज शिव की पूजा करता हूं आकाश कुसुमों से, फ्लावर्स ऑफ स्काई, आकाश में जो फूल खिलते हैं, आकाश फूल उसको बोलते हैं, आकाश कुसुमों से पूजा करता हूं। तो आप इसमें इस ये जो ज्ञान आपको मिला, आप उसको कितना सच मानेंगे कितना झूठ मानेंगे, ये डिपेंड, इसके लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसी को हम संभव कहते हैं या प्रोबेबिलिटी। क्या ये संभव है कि आकाश में कभी फूल खिलता हो? तो कभी संभव है ही नहीं है। तो कोई बोले तो आपको झूठ मानना पड़ेगा, स्वीकार कर, आंख मूंद के स्वीकार कर लेंगे तो हम उस झूठ को स्वीकार करेंगे। कभी कभी बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़ा बड़बोले होते हैं, कभी भी अपना बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं जो होता नहीं है। ये ज्यादातर पॉलिटिकल जो छोटे मोटे लेवल के जो पॉलिटिक्स में लोग होते हैं वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेरे प्रेसिडेंट तक पहुंचे, मेरे यहाँ तक पहुंचे। तो ऐसे एक व्यक्ति ने एक दिन कहा कि भाई देखो, मैं कल रात को ना एक शादी में गया था। किसकी शादी में? ये हमारे पड़ोसी में एक वो बंध्या रहती, बंध्या मतलब जिसके जिसके बच्चे नहीं होते, उस बंध्या के पुत्र की शादी में गया था। और हम मान गए, बंध्या का अर्थ होता है जिसके बच्चे नहीं होते, तो उसका बच्चा कहाँ से आया कि उसकी शादी होगी? तुम्हारे बाल बड़े काले काले दिख रहे हैं, भरे भरे दिख रहे हैं, क्या करते हो? मैं खरगोश के सींग की कंघी से एक कंघी करता हूं। अरे मान गए, पर जब आप इंटरनेट खोल के देखा, पता चला खरगोश की सींग होती नहीं। तो संभव का मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे जब जो चीजें संसार में हो ही नहीं सकता, अब जो हो सकता है उन दोनों में फर्क करके सत्य सच या झूठ का ज्ञान का पता लगाया जाए। जैसे ज्यादातर ये जो मिरेकल्स करके लोग पैसा कमाते हैं, बाबा बनते हैं या भगवान बनते हैं, उनके लिए भी अगर थोड़ी बहुत हम अपना कॉमन सेंस यूज करें, वो कॉमन सेंस यही संभव प्रमाण है, तो हम पता लगे दुनिया में ये असंभव है कि आप आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, आप उसको कोई ट्रीटमेंट ना करके कोई मंत्र पढ़ के ठीक कर देते हैं, कोई आपके लिए कॉल सेंटर में प्रेयर करता है, आप उसको फोन करते हैं कि मेरी अमुक बीमारी है, तो कहता है अच्छा ठीक, अपना नाम और बीमारी बताइए, हम आपके लिए गॉड से प्रेयर करेंगे, उसके लिए आप $2,000 फी जमा कर लीजिए, और वो कॉल सेंटर में बैठ के प्रे करता है और आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। ये संभव नहीं है। तो इस तरह के कभी हमें अगर लगता है कि दुनिया में ये सब हो रहा है, ये सच है कि झूठ है, ये प्राकृतिक रूप से झूठ होने से ये संभव नहीं है। अगला है अभाव। अभाव का मतलब नेगेशन। कोई चीज को जब हम प्रूव करते हैं उसके दो एंगल से प्रूव करते हैं, ये कागज यहां है, जब कागज नहीं है तो भी कागज एग्जिस्ट करता है। जब आप कहते हैं कागज नहीं है, दैट मीन्स वो आप प्लेस को इंडिकेट करते हो, आप जगह को इंडिकेट करते हो कि यहाँ नहीं है पर वो समवेयर है। तो इस तरह के जो आठ तरह के प्रमाण है, उनमें जो पिछले बार हमने जो पांच प्रमाणों की बात की, वो चार प्रमाणों की, वो चार प्रमाण मेन प्रमाण है, ये सारे एडिशनल प्रमाण है, इनको माने ना माने ये ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, पर हमारे शास्त्रों में इन सबको यूज करके सच और झूठ को पता लगाने की कोशिश की जाती रही है, और ये एडवाइस दी जाती रही है हमारे समाज को कि आप अपने जीवन में सच और झूठ को पता लगाने के लिए इन आठों में से कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट जरूर यूज करते रहिए। पर प्रॉब्लम है, जिस समाज में इतना सारा काम सच और झूठ को पता लगाने के लिए किया गया, वही समाज सबसे ज़्यादा इग्नोरेंट है, कम से कम स्पिरिचुअल और रिलीजियन के नाम पर। हमारे जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस है वो इंडियन लोगों में बहुत कम दिखता है। बहुत यहाँ नॉलेज है, बहुत स्क्रिप्चर है, बहुत सारे टीचर्स हैं, पर पब्लिक में स्पिरिचुअल अवेयरनेस बहुत कम है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस के नाम पर बहुत कुछ रिचुअल्स में हम फंसे जाते हैं। अगला स्लाइड देखेंगे। ये वैशेषिक दर्शन का सूत्र है। जो हमने आठ तरह के ज्ञान की प्रक्रिया हमने देखा कि ये आठ इंस्ट्रूमेंट्स है वा वेज है जिसके द्वारा हम दुनिया को जाने, तो दुनिया में जानने लायक ऐसी क्या चीजें जिनको जानने के लिए हम इनका यूज करें? धर्म विशेष प्रसूता द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम तत्व ज्ञानान निश्रेयसम। स्वामी जी वैशेषिक सूत्र को ये कोट करते हैं, मैन गेट्स फाइनल रिलीज बाय अबटेनिंग ट्रू नॉलेज ऑफ द सिक्स कैटेगरीज आफ्टर हैविंग लिव्ड लाइफ 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 ऑफ ट्रूथफुलनेस। द सिक्स कैटेगरीज आर सब्सटेंस, सब्सटेंस पदार्थ को द्रव्य को कहते हैं, कोई भी वस्तु उसकी जो क्वालिटीज हैं, मान लीजिए आप एक व्यक्ति को जानना चाहते हैं, व्यक्ति अपने आप में एक सब्सटेंस है। आप जब किसी व्यक्ति को जानते हैं तो खाली उसका रूप नहीं, उसका कोई उस व्यक्ति को नहीं जानते, उसके कुछ क्वालिटीज जानते हैं, उसके कुछ गुण धर्म जानते हैं, उसकी एक्टिविटीज, उसकी जनरलिटी। एक इंसान इंसान है क्योंकि इंसानियत है, ये जो इंसानियत है ये जनरलिटी है, इसको सामान्य कहते हैं, पर्टिकुलरिटी। पर वो इंसान है होने पर इसका अर्थ नहीं कि 700 करोड़ इंसान और इसमें कोई फर्क नहीं है, वो इंडिविजुअल भी है, वो 700 करोड़ों में से एक है, पर इसकी भी अपनी इंडिविजुअलिज्म है, वो इंडिविजुअलिज्म है और इनहेरेंस जो उसके अंदर इनहेरेंट क्वालिटीज हैं। ये छह तरह की चीजें हैं जिनको हम अपने जो अलग अलग सोर्स ऑफ नॉलेज है उसके द्वारा जानने की पता लगाने की कोशिश करते हैं। मैं इन सब चीज़ों की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि बड़ा हेवी हो जाएंगे, बहुत फिलोसफिकल विषय है, प्रवचन में इस तरह चीज़ें बोलना भी जो बोलता है वो भी थोड़ा बेवकूफ़ हो जा, तो मैं इतना बेवकूफ़ बनना नहीं चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा उसको जो जो जरूरी चीज़ें हैं, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में ये चैप्टर सब आया है तो इसीलिए मैं इंडिकेट करके आगे बढ़ता हूँ। उनमें जो छह तरह की चीज़ें आपको बताया उनमें एक है सब्सटेंस, जो द्रव्य है। ये अगला स्लाइड है। संसार में 9 तरह के सब्सटेंस माने जाते हैं हमारे वैशेषिक फिलोसफी की दृष्टि से। पृथ्वी, आपत, तेजो, वायु, आकाशम, कालो, दिक, आत्मा, मन, इति द्रव्याणि। पहले के 5 तो आप जानते हैं, अर्थ, वाटर, लाइट, एयर, ईथर, जिसको आप कहते हैं पंचमहाभूत। बाकी जो 4 है, टाइम, स्पेस, दिक, आत्मा और मन, ये चारों के बारे में छोटी छोटी चीजें आपको बता दें। काल और स्थान, जो स्पेस है जिसको हम आकाश कहते हैं, काल और आकाश स्पेस, ये दोनों भी इटर्नल होते हैं, ये कभी ना बनते हैं ना बिगड़ते हैं। जिस समय के बारे में हम जानते हैं कि अभी 11:30 बज रहा है, जब आप आए थे तब 10 बजा था, अभी शाम है या सुबह है, आज का डेट ये है, ये जो समय की जो जो हमने कैटेगराइजेशन किया है, जो बांटा है, ये इंसान ने अपने अपने सुविधा के लिए, कन्वीनियंट के लिए, सूर्य और चंद्रमा के गति को ध्यान में रखकर दिन और रात के हिसाब से हमने एक अपनी सुविधा के लिए टाइम घड़ी बनाया है। पर सच बात है जो टाइम है ना, वो 5 घंटा होता है ना, 8 घंटा होता है ना, 5 सेकंड होता है। टाइम इटरनल है, वो दुनिया में जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ भी समय है, जहाँ सब कुछ है वहाँ भी समय है, जब कुछ भी नहीं रहेगा तो भी समय रहेगा। और समय कोई 5 दिन, 5 रात, 5 साल, 5 युग नहीं होता, समय समय होता है। जैसे आकाश का कोई लिमिटेशन नहीं होता, आकाश का मतलब स्पेस। आपने ये ऑडिटोरियम बनाया, अब ये ऑडिटोरियम का जो स्पेस है ये अलग है, जो जनरल स्पेस है, जो महाकाश है वो अलग है। क्या सचमुच वो बाहर का आकाश और घर का आकाश अलग है? नहीं है। सिर्फ दीवार अलग अलग कर देने से आपको अलग दिखता है, आप दीवार टूट जाएगा, ये स्पेस और बाहर स्पेस एक हो जाएंगे। और हुआ है, हर 500 साल, 1000 साल, 100 साल में घर टूटते हैं, मतलब वो जो स्पेस को हमने एक्वायर किया था, जिसको नाम दूसरा नाम दिया था कि ये आकाश ने ये मेरा घर है, ये आकाश ने ये मेरा घड़ा है, ये आकाश ने ये मेरा बेड है, तो वो जब बेड टूटता है, जब घर टूटता है, जब घड़ा टूटता है, जब जब स्टोर्स टूटते हैं, तो वो फिर वापस अपने पुराने आकाश में लीन हो जाते हैं। इसी तरह समय को जो हमने बांट रखा है, वो हमने अपनी सुविधा के लिए, वो इंसान जब तक रहेगा तब तक ये जो दिन रात की हिसाब किताब रहेगा, पर इंसान जब नहीं था तब भी समय था, इंसान जब नहीं होगा तो भी समय होगा। तो समय और जो 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 स्थान है, जो स्पेस है और टाइम है, ये हमेशा इटरनल होते हैं। और अगली चीज है सोल आत्मा, जिसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, अगली स्लाइड पर आएंगे। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, जो जो धार्मिक होते हैं या अधार्मिक होते हैं, एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या सचमुच आत्मा होती है। बहुत सारे लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे 20 साल से 50 साल से मंदिरों में जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो भी अचानक सवाल पूछ लेते हैं, सचमुच आत्मा कुछ होती है, प्राइवेटली पूछ लेते हैं, मतलब दिल नहीं मानता है। बहुत सारे तरह के जो उसके अपोजिट लॉजिक्स भी होते हैं, आत्मा होती है कि नहीं होती, आत्मा अगर है उसका क्या पहचान क्या है, उसके लिए न्याय दर्शन ने एक छोटा सा सूत्र मैं आपके सामने कोट करता हूँ, स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में कोट किया, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम इति। इनमें से कोई भी एक चीज जिसमें हो तो समझ लीजिए कि उसके अंदर एक जो चीज है वही आत्मा है। इनमें से कोई भी चीज, इच्छा या डिजायर हो, अवर्शन हो, द्वेष हो, प्रयत्न वोलिटेशन जो संकल्प है, सुख या दुख हो, या नॉलेज, ये पांचों में से कोई भी चीज जिसके अंदर हो, इसका मत जिसका ये दिखे इनमें से पांचों में से कोई एक चीज, तो हम समझ जाते हैं कि इसके अंदर एक आत्मा है। एक डेड बॉडी और जो 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 मुर्दा है, जो मरा हुआ व्यक्ति है और जीवित व्यक्ति में हम क्या अंतर करते हैं, इन्हीं पांचों चीजों का अंतर करते हैं कि अगर आप उसमें कोई वो इच्छा करने लायक नहीं रहा, अगर उसके अंदर द्वेष करने लायक कुछ, वो किसी चीज को पसंद नापसंद नहीं करने लायक है, उसके अंदर कोई एक्टिविटी करने की कोई क्षमता नहीं है, वो अगर प्लेजर या पेन, सुख या दुख को अगर वो एहसास नहीं कर पा रहा है, अगर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो डेड बॉडी के कैटेगरी में आता है। दुनिया में कितने भी हम नास्तिक हो जाएं, एक चीज जरूर, हम एक समय ऐसा आता है जब हम जरूर आत्मा को मानते हैं, जब हमारा अपना कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, कोई कोई मर जाता है, तो जरूर हम उस समय ये बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि हमारे चाचा जी, पिताजी, माता जी, दादा जी, दादी जी, जो जो भी जिनका भी देहांत हुआ है, वो चले गए। अब चले कहाँ गए, रिलेटिव्स तो दौड़े दौड़े घर में आए, देखे बेड पर पड़े हुए हैं, तो आपने कहा कि वो तो चले गए, अब नहीं रहे, तो इसको क्या करें, इसको श्मशान में ले जाएंगे, जला देंगे। क्यों भाई, कल तक तो तुम कह रहा था ये दादाजी है, ये दादी जी है, ये चाचा है, चाची है, जो भी है, अब कैसे, तो पड़े हैं, रहे नहीं कैसे। इसका मतलब हम अभी तक जिसको दादा समझ रहे थे, दादी समझ रहे थे, पापा समझ रहे थे, माँ समझ रहे थे, जो भी समझ रहे थे, वो कोई और था जो चला गया, और जिसको हम समझ रहे थे वो तो अभी भी पड़ा हुआ है। तो जो आत्मा को नहीं भी मानता है, वो भी तो मरते समय यही बोलता है कि ये मेरे पापा की डेड बॉडी है, पापा कहाँ है, कल तक तो तुम आत्मा नहीं। इसका मतलब हम शरीर नहीं है, हम शरीर के होने पर भी हम नहीं होते हैं। जब मेरे शरीर के अंदर वो चीज नहीं रहेगी जिसके कारण मैं हिलता डुलता हूं, बोलता हूं, चलता हूं, मेरे शरीर में एक्टिविटीज होती है, तब फिर आप इस शरीर को सम्मान नहीं देंगे, आप उसको जला देंगे, गाड़ देंगे। बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो तो आप कहेंगे मैं नहीं छोड़ूंगा, पर आप नहीं भी छोड़े, चौथे दिन, पांचवें दिन बदबू आएगा, कीड़े लगने लग जाएंगे, वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। तो एक समय आता है, दुनिया में व्यक्ति कितना भी नास्तिक हो, आत्मा या को नहीं मानता हो, उसको वो जो हमारा जो द्वैत है, जो हमारा जो ड्वेलिटी है, उसको वो एक्सेप्ट करता है, कि मैं ये शरीर नहीं हूं, या जो जो जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात करता हूं वो शरीर नहीं है, वो शरीर के रहने के बाद भी वो व्यक्ति नहीं मिलता है। अब पापा नहीं रहे पर पापा का शरीर है, वो जो मिस्र में इजिप्ट में जो ममीज है, अब 2000 3000 4000 साल पहले की ममीज अभी भी है और उनका शरीर है, ठीक है हड्डी वगैरह है वो जो भी है, पर उसमें वो राजा अब नहीं रहे, वो रानी नहीं रहे उसके अंदर। तो इस जरूर कोई दूसरा तत्व है जो जिसके जिसके होने पर हम होते हैं। मैं तभी होता हूं जब कोई दूसरा होता है, शरीर के होने पर नहीं। वो जो दूसरा है जिसके होने पर मैं कह सकता हूं, उसी को हम आत्मा कहते हैं। जिसके चले जाने पर मैं तो मैं कह नहीं सकता, आप भी मुझे कहलाने की कोशिश करें तो भी नहीं होगा। तो मैं दो चीजों का बनावट हूं, एक शरीर है और जो दूसरा उसी को हम आत्मा कहते हैं। आप कोई दूसरा नाम देना चाहें वो स्वागत है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम के लिए लड़ना तो बुरी बात है, आप दुनिया में ज्यादातर नाम के लिए लड़ी जाती है कि नहीं आप इसको ईश्वर मत कहो, इसको गॉड कहो, इसको वो कहो, तो ये नाम के लिए लड़ना तो फिजूल की बातें हैं, पागलपन है, उसमें कुछ रखा नहीं है। आप नाम आत्मा मत बोलो, आप उसको एनर्जी बोलो, आप उसको और कुछ बोलो, आपके ऊपर भरोसा करता है आप किस तरह की भाषा को पसंद करते हो, आप उसका क्या नाम देना चाहते हो। पर ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण होता है जब मैं मरा पड़ा होता हूँ, मेरी डेड बॉडी पड़ी होती है, तब कोई भी उसको केयर नहीं करता है। आप उसको जलाओ, राख करो, गाड़ो, उसको कुत्ता बिल्ली खा जाए, कुछ भी नोच दे, कुछ नहीं फर्क पड़ता। इसीलिए आत्मा का ज्ञान कम से कम वो नास्तिक व्यक्ति को तब होता है। हे, इसका क्या प्रमाण है, कैसे पता लगाएं कि ये इस व्यक्ति इसमें आत्मा है? तो न्याय दर्शन कहता है जब जहां भी आपको इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानों में से कोई एक भी चिन्ह दिख जाए तो आप इसको जीवित मानोगे। जीवित मतलब लिविंग बींग मानोगे, मतलब उसके अंदर एक आत्मा है। और आपको आश्चर्य होगा, मुझे नहीं पता दूसरे कल्चर में क्या क्या फिलोसफी है, हमारे यहाँ जब से वेद शुरू हुआ तब से हम पेड़ पौधों तक भी प्राणी मानते। क्यों? जब ये जो 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 जो, जो मार्क्स से साइंस से वो जिसमें भी दिख जाए व जिसमें दिखाई दे हम उसे प्राणी मानते हैं, जीवात्मा मानते हैं। तो पेड़ पौधों में जीव आत्मा है ऐसा हम आज नहीं वैदिक काल से जानते हैं, अब 10,000 साल पहले से जानते हैं। वो अलग बात है कि क्यों, क्योंकि उसमें ज्ञान होता है, वो उसको फील करते हैं। ये अलग बात है कि जिनके अंदर आत्मा होती है उनमें जो इंटेलेक्ट का लेवल है सब में बराबर शायद नहीं होता है। इंसान की बुद्धि की क्षमता, प्राणियों में जो बुद्धि है उसका स्तर अलग अलग हो सकता है, इंसानों में भी एक इंसान में दूसरे इंसान से अलग अलग हो सकता है, प्राणियों में अलग अलग प्राणियों में जो लेवल ऑफ इंटेलेक्ट है उसमें फर्क आता है, प्राणियों के जो जो प्राणियों में भी जो सेल, यहाँ तक कि जो एक व्यक्ति के अंदर भी लाखों करोड़ों अरबों सेल्स से कोशिकाएं हैं, जीवित कोशिकाएं हैं, उसको भी हम प्राण प्राणी गिनते हैं, उसको भी हम जीव गिनते हैं। वो एक क्षण के लिए जीते हैं, वो एक मोमेंट के लिए जीते हैं, अगले क्षण मर जाते हैं, पर क्योंकि वो पैदा होते हैं मरते हैं, उनमें एक्टिविटीज है, वो मूव करते हैं, तो हम उनको भी हम अजीवा मानते हैं। पर किसमें किस लेवल तक प्राण शक्ति है, किस लेवल तक बुद्धि शक्ति है, वो अलग बात है। पर आत्मा उन चीजों में होती है जिसमें इन 5-6 में से कोई भी एक लक्षण हमें दिखाई देता है। अभी हमने चर्चा की कि सही ज्ञान जानने की जो तरीके हैं, आठ तरह की जो सोर्सेस ऑफ नॉलेज हमने उसकी चर्चा की, तो लोगों को जो अज्ञान होता है, जो इग्नोरेंस होता है, जो वो नासमझी होती है, वो क्यों होती है? अगर आप कहेंगे पढ़ने लिखने से या ना पढ़ने लिखने से अज्ञान होता है, ऐसा दुनिया में नहीं दिखता है। पढ़े लिखे लोग भी अलग अलग विषय, मान लीजिए मैं किसी एक विषय में जानता हूं, दुनिया में बहुत सारे विषयों में मैं इग्नोरेंट हूं, मैं अज्ञानी हूं। दूसरा है कि हो सकता है जिस विषय को मैं पढ़ा हूं उसी विषय में भी मैं अज्ञानी होता हूं। इसका क्या कारण है कि व्यक्ति के अंदर इग्नोरेंस होता है? तो ये वैशेषिक दर्शन के कुछ सूत्र हैं, अगले स्लाइड करेंगे। इंद्रिय दोषात संस्कार दोषाच अविद्या। इंद्रिय दोषात, जिसको आप कहते हैं डायरेक्ट परसेप्शन, प्रत्यक्ष ज्ञान, उस दिन हमने चर्चा की थी जब हम प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा कर रहे थे। हो सकता है कि सामने व्यक्ति बैठा हो, एक पेड़ है, पर आपको पेड़ नहीं दिख रहा है। अगर पेड़ नहीं दिख रहा है तो आपके इंद्रियों में कोई कमी होगी। तो पांच तरह की इंद्रियों की प्रॉब्लम्स हैं। एक तो बहुत दूर हो तो आंखें नहीं देख सकती हैं, हमारी इंद्रियां। बहुत दूर हो, उसे आवाज आ रहा हो, कान नहीं सुन सकता है। बहुत नजदीक हो तो भी हमें दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, हम उसको एहसास नहीं कर पाते। बहुत आंखों के ऊपर जो जो बाल है वो हमें नहीं दिखाई देता है। जो करीबी हमारे घर के जो बहुत क्लोज लोग होते हैं, कभी कभी हम ज्यादातर इनको इग्नोर कर देते हैं, दूसरे की फीलिंग को जल्दी समझ जाते हैं, अपने लोगों की फीलिंग कम समझते हैं, क्योंकि बहुत क्लोज होते हैं तो हम उनको ग्रांटेड ले लेते हैं। तो अति व्यवधान, जो बहुत दूर हो या बहुत नजदीक हो या बहुत छोटा हो, बहुत शटल फॉर्म में हो, तो भी हम उसको, वस्तु के होने पर भी हम उसको जान नहीं पाते, हमारी इग्नोरेंस बनी रहती है। इस कमरे में कितने लाखों करोड़ों में आपको मिलेंगे वो जो धूल मिलेंगे, पर हमें नहीं दिखते क्योंकि उतने इतने बारीकी से होते हैं। अगर आप उसके लिए माइक्रोस्कोप लाए या लाए तो आपको दिखेगा कितने भरे हुए हैं। हमें लग रहा होगा हम बड़े साफ सुथरे कमरे में बैठे हुए हैं, पर जब आप वो माइक्रोस्कोप लाकर देखते हैं तो आपको पता लगता है कितने भी साफ से साफ कमरे में बैठे हैं, आपके हवा में कितने सारे तत्व घूम रहे होते हैं। हमें नहीं दिखते क्योंकि बड़े सूक्ष्म होते हैं। आत्मा नहीं दिखती है क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। परमात्मा नहीं दिखती क्योंकि वो सूक्ष्म है। आकाश नहीं दिखता क्योंकि वो सूक्ष्म है। एनर्जी नहीं दिखती क्योंकि वो सूक्ष्म है। एटम नहीं दिखता क्योंकि वो सूक्ष्म है। इसी तरह दुनिया में अनगिनत चीजें हैं जो हमें, वस्तु हैं, पर हमें उनका ज्ञान नहीं हो पाता क्योंकि हमारा इंद्रिय वहां तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि वो बड़े सूक्ष्म है। इसी तरह बहुत विशाल होने पर भी हमारे हमारी इंद्रियां उनको पकड़ नहीं पाती हैं। जैसे हम आकाश को कभी जान नहीं पाएंगे क्योंकि आकाश जो स्पेस है वो इतना बड़ा है, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ये जो गैलेक्सी जो 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 तारों की नक्षत्र मंडल खत्म हो जाएंगे, ये संसार में संसार खत्म हो जाएगा तो भी स्पेस बचा रहेगा। तो कैसे हम पता लगा पाए कि कितना बड़ा स्पेस है? एक मछली कभी नहीं पता कर पाएगी कि समुन्दर कितना बड़ा है। उसको ये अंदाज भी नहीं हो सकता है कि समुन्दर बड़ी भी होती है। उसको समुन्दर बड़ी बड़ा है ये पता लगाने के लिए एक तो किनारे आना पड़ेगा, तभी दिखेगा कि उसके आंख जाता नहीं इतनी दूर तक, क्योंकि मछली को एक कम जगह चाहिए रहने के लिए। कभी कभी तैरते तैरते वो 1000 किलोमीटर माइल चला भी जाए पर उसको लगेगा इतना बड़ा समुद्र है। इसी तरह इंसान भी इस इतने बड़े महाकाश को कभी आंक नहीं सकता क्योंकि इसकी इंद्रियां विशाल चीजों को आंकने के लायक नहीं होता है। पांचवी समस्या है कि इंद्रियों की कोई व्यवधान हो। हो सकता है आप मेरे नजदीक हैं, हो सकता है कि ये जो यहाँ ये चीज मेरे से, आप मेरे से बहुत दूर बैठे हैं और मेरे से नीचे ये चीज बहुत नजदीक है, पर ये मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या है क्योंकि बीच में कोई ऑब्स्टिकल है, कोई बाधा है। मुझे नहीं दिख रहा, इसका अर्थ नहीं है कि ये नहीं है। अगर मैं मानूं ये नहीं है, ये मेरी इग्नोरेंस है, और वो इग्नोरेंस अज्ञान क्यों है, क्योंकि मेरी इंद्रियां कमजोर है, वो उसको नहीं देख पाती है। छठा प्रॉब्लम है इंद्रियों के साथ कि इंद्रियों में ही खुद कहीं डिफेक्ट हो सकता है वो दूर नहीं, नजदीक नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, कोई ऑब्स्टिकल नहीं, कोई बाधा नहीं, उसके बावजूद भी मुझे नहीं दिखता। मेरे आंखों में कोई प्रॉब्लम हो, या हो सकता है बहुत सारे लोगों को दिन में नहीं दिखता, उनको रात को दिखता है, किसी को कलर ब्लाइंड प्रॉब्लम है, उनको कलर पता नहीं लग पाते हैं, कुछ कम दिखता है, बिना चश्मे के नहीं दिखता। तो वस्तु के होने पर भी, हमारे आंखें होने पर भी हम वस्तु को जान नहीं पाते, क्योंकि हमारे आंखों में कोई समस्या है, हमारे कानों में कोई समस्या है। सातवीं समस्या है कि हमारा मन एक ही समय में एक ही ज्ञान लेता है, हमारे पांचों इंद्रियां एक ही साथ काम कर सकते हैं। आप खाना भी खाते हैं, टीवी भी देखते हैं, और अब अपने जो अपने घर में बैठने वाले जो कमरे में बैठे हुए बाकी दोस्तों से बात भी कर रहे हैं, अब खाना भी खा रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आप तीनों काम साथ साथ कर रहे हैं, पर अगर आप बड़े बारीकी से ध्यान देंगे, आपके अंदर एक ही समय में एक ही चीज जाता है, क्योंकि मन का लक्षण है कि वो एक ही समय में एक ही चीज एक्सेप्ट करता है। ऊपर तो पांचों नलियां लगी हुई हैं, तो पांचों तरह से सामान आ रहे हैं, पर नीचे उसको जो वो जो स्क्रीनिंग करता है वो एक ही नली है, एक साथ एक ही सामान अंदर जाता है। जब आपको टीवी की बात समझ आ रही होगी, तो आप वो क्या सामने वाला बोल रहा है आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप सुन जरूर रहे होंगे, पर आपके दिल में कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, ना खाने का स्वाद पता लग रहा होगा। जिस समय आपको खाने का स्वाद पता लग रहा होगा, टीवी का जो प्रोग्राम चल रहा होता है, आपको कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, आप देख रहे होंगे तो भी पता नहीं पड़ेगा, आपको कोई बोल रहा होगा तो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप खाने के स्वाद में बिजी है। खाते समय अगर दूसरे की बात आपको समझ में आ रही है, यकीन मानिए आपके खाने में स्वाद नहीं होगा, आप ढंग से नहीं खा रहे। इसीलिए प्राचीन काल से अभी तक ये हमारे यहाँ एक व्यवस्था है कि खाते समय बात नहीं करना, तो बात करते हैं तो खाने का, इतने महंगे खाना खाने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आप उसका स्वाद नहीं पा पा रहे। तो बीच बीच में आप 24 घंटे तो बोलते नहीं होते हैं, जब खाना खाते हैं, जब 10 मिनट के लिए खाना खाते हैं तो पूरे 10 मिनट नहीं बोलते हैं। वो जो बीच बीच में आप दया करके थोड़ा चुप हो जाते हैं, उतने में आपको स्वाद पता लगता है कि कड़ी कैसी है। तो अगर कभी खाने का पूरा मजा लेना है, तो आप खाना खाने पर ही कंसंट्रेट करिए, क्योंकि ये मन का स्वभाव है, वो एक ही समय में एक ही चीज एक्सेप्ट करता है। हो सकता है आपको लगे नहीं, मैं तो एक ही मिनट में तीन चार चीजें एक्सेप्ट कर लिया, पर वो इतनी बारीकी होगी, वो इतने जल्दी होगा, एक ही साथ आप कड़ी का भी स्वाद लेंगे, बातचीत भी समझेंगे। हो सकता है एक मिनट में आपने सारे कर लिया, पर वो एक के बाद एक ही हो पाएगा। तो ये कुछ हमारी ज्ञान अज्ञानता के कुछ कारण है। पहला कारण है कि हमारे अपने इंद्रियों के कोई डिफेक्ट हो, जिसके कारण हमें हमें किताब पढ़ने के बाद भी ज्ञान नहीं हुआ, सुनने के बाद भी समझ में नहीं आया। और बड़े एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताएं, ऐसा नहीं कि कोई चीज आप सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो आपको ज्ञान होता है। ज्यादातर हम लोग बड़े समझदार लोग होते हैं, हमें उतना समझ में आता है, वही समझ में आता है जो हमें पसंद है और जो हम समझना चाहते हैं। हमें वो चीजें अच्छा नहीं, समझ में ही आता नहीं, अच्छा लगना तो दूर की बात है, जो चीजें हमें समझना नहीं है। जैसे मान लीजिए आप यहां 40 मिनट 30 मिनट प्रवचन सुन के जाते हैं, हर व्यक्ति का अलग अलग कमेंट होता है, कभी कभी ऐसा कमेंट होता है जो हमने बोला ही नहीं, हमने बोला है पर वो कहता है आपने ऐसा बोला क्यों नहीं, पर वो सब बोला था और कम से कम 20 मिनट बोला था। हो सकता है 9:05 पर मैंने कुछ बोला और उस व्यक्ति उस बोलने पर सोचने लगा, उसको बुरा लगा या अच्छा लगा, बाकी 30 मिनट तक उसने सुना नहीं कि 30 मिनट तक मैंने उसका क्या क्या मैंने समाधान दिया। वो आपसे पूछेगा आपने ऐसा बोला क्यों बोला, पर तुम तो 35 मिनट तक प्रवचन सुन रहे थे ना, आपने तो बोला नहीं। वो सुना वो व्यक्ति कान से सुना, पर 9:05 के उसको कोई चीज उसको छू गया, उसके बाद 30 मिनट तक वो सुनता रहा पर अंदर कुछ गया नहीं। हम लोग थोड़े ज्यादातर लोग हमारे में से ऐसे हैं जो सुनते हैं पढ़ते हैं, कोई भी बुक आप पढ़ते हैं, आप उतना ही एक्सेप्ट करते हैं जितना आपके लायक है, बात जो जो आपको पसंद है या नापसंद है, बाकी चीजों का आप इग्नोर करते हैं कितनी भी ज्ञानपूर्ण बातें हो। एक छोटी सी कहानी हमने कहीं से सुनी थी, कह के बात को विराम देंगे, आगे आगे करेंगे। एक बनारस में एक महिला थी और वो उसका पति का देहांत हो गया, उसके पास बहुत जमीन जायदाद थी, बहुत संपत्ति थी, पुराने जमाने की बात है, वो विधवा हो गई। अब पंडित लोग आए कि भाई आप अब पिंड दान करो, ब्राह्मण को इतना दान करो तो इतनी आत्मा शांति होगी, ये करो ये आत्मा शांति होगी, ये होगी ये आत्मा शांति होगी। अब आपको पता है, अगर आप गए होंगे हरिद्वार बनारस गया, अगर वो पितृ पिंड दान करने के लिए आपको कितना वो चूसते हैं, लूटते हैं, जोंक की तरह, सांप की तरह, अजगर की तरह, वो जो जाता है वो बेचारा जानता है उसको कितना सत्यानाश करके छोड़ते हैं। तो वो विधवा के पीछे पड़ गए सब। तो उसने एक घोषणा की, वो बड़ा तंग आ गया, तो उसने घोषणा की कि जो विद्वान पंडित मुझे समझा देगा विधवा का क्या अर्थ है, मैं अपनी सारी संपत्ति उसको दान में दे दूंगी। उनकी सहेलियों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, बेवकूफी की बातें कर रहे हो, तो इतनी बनारस है, काशी पंडितों का गढ़ है, कोई भी आएगा तुझे 2 मिनट में समझा के चला जाएगा सारी संपत्ति लेके। बोले देखो कौन समझाता है। पंडित आते गए, एक से एक उद्भट विद्वान आते गए, 2 मिनट से लेकर 2 दिन 2 महीने तक समझाते रहे, और जब पूछे समझ में आया, बोला नहीं। बोला मैं समझना चाहूं तब तो समझू, आप बोल सकते हो, सुना सकते हो, समझा सकते हो, पर समझना तो मेरे हाथ में ना, मुझे तो समझ में आया नहीं। पढ़े लिखे लोगों में भी, आपको भी कहना तो थोड़ा गलत है, पढ़े लिखे लोगों में भी बहुत मात्रा में इस तरह के सुपरस्टिशियंस दिखता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ते भी हैं तो अपने दृष्टि से पढ़ते हैं, सो कॉल्ड कल्चर को बचाने के नाम पर, सो कॉल्ड ट्रेडिशन को बचाने के नाम पर, सो कॉल्ड कस्टम को बचाने के नाम पर अंधाधुंध लॉजिक ढूंढते हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल है, विद्वान है, तो लॉजिक ढूंढते हैं उस सुपरस्टिशन को छुपाने के लिए। पर ये एक्सेप्ट करने को, ये पढ़ लिख करके सुन करके एक्सेप्ट करने को, समझने को तैयार नहीं होते कि भाई ये अगर गलत है तो गलत मान लो, ये अगर सही है तो सही मान लो। उस बनारस की उस महिला की तरह हम सबकी जिंदगी होती है, हम उतना एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे हमारे अनुकूल हो। दूसरी चीज जो हमारी अज्ञानता है, इसको कह के खत्म करेंगे, जो अज्ञानता है वो संस्कार दोष, अगले प्रवचन में, दिवाली के बाद वाले प्रवचन में हम चर्चा करेंगे। ये संस्कार दोष क्या होता है, जिसके कारण हमारे अंदर अज्ञान होता है। हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी होने के बावजूद भी, क्यों हमारे अंदर बहुत तरह के अज्ञानता, सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक अज्ञानता भरी होती है, उसमें एक दूसरा कारण है संस्कार दोष। इसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। अब हम आरती